नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया। इसे शक्ति के स्थान पर सेवा की भावना का प्रतीक बताया। सेवा तीर्थ में नए प्रधानमंत्री कार्यालय से पहले निर्णयों में दुर्घटना राहत, महिलाओं, कृषि और स्टार्टअप सहित चार प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति दी। बजट अधिवेशन का पहला चरण संपन्न। 3 सप्ताह के अवकाश के बाद दूसरे चरण के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक 9 मार्च से शुरू होगी। सरकार ने घरेलू बाजार में स्थिरता और किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 25 लाख मीट्रिक लाख टन गेहूं के साथ अतिरिक्त 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दी। और नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत ने 7 पदक जीते। सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धा में 13 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 30 पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज से दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बजाय सेवा तीर्थ से कामकाज शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित किया।
आज हम सभी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। यहाँ से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूँ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन 1 और 2 विकसित राष्ट्र की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये नागरिक केंद्रित शासन और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि लोग नया इतिहास बनते देख रहे हैं।
जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसराय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है।
श्री मोदी ने सेवा तीर्थ में पहले दिन कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें पीएम राहत योजना को मंजूरी, लखपति दीदियों के लक्ष्य को दोगुना करके 6 करोड़ रुपए, कृषि बुनियादी ढांचा कोष को दोगुना करके 2 लाख करोड़ रुपए और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण को 10,000 करोड़ रुपए की निधि की मंजूरी शामिल है। श्री मोदी ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और संकटग्रस्त नागरिकों से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज शुरू करने पर श्री मोदी के निर्णय सेवा की भावना को दर्शाते हैं तथा समाज के हर वर्ग को इसमें सम्मिलित करते हैं। प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक निशुल्क उपचार प्राप्त कर सकेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने सेवा तीर्थ के उद्घाटन को ऐतिहासिक क्षण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सेवा तीर्थ आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर भारत की प्रगति का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पहल ने देश को अतीत और औपनिवेशिक विरासत के प्रतीकों से आगे बढ़कर सेवा और कर्तव्य में निहित आदर्शों को अपनाने में सक्षम बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा भावना से संचालित सरकार के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
संसद का बजट सत्र पिछले महीने की 28 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और बजट 2026-27 पेश किया। इस महीने की 2 तारीख को लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते और भारत चीन सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर खास बहस नहीं हो सकी। राज्यसभा के सांसदों ने अभिभाषण में हुई चर्चा में जमकर हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के विजन को सामने रखा और इस बात पर जोर दिया कि भारत पूरे आत्मविश्वास और अहम नीतिगत सुधारों के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। लोकसभा में गतिरोध जारी रहने पर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। बाद में दोनों सदनों में बजट 2026-27 पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि इस साल के बजट में कई अहम बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जो कि विकसित भारत का लक्ष्य पाने में अहम साबित होंगी। संसद की कार्रवाई एक छोटे अंतराल के बाद 9 मार्च को फिर से शुरू होगी और सदन की कार्रवाई 2 अप्रैल तक चलेगी। अनुपम मिश्र के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे के मूल प्रस्ताव पर अध्यक्ष से चर्चा के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। श्री रिजिजू ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अब सरकार राहुल गांधी के खिलाफ अपने प्रस्ताव को सदन में नहीं लाएगी।
राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में बजट स्पीच में भी अनाप शराब बातें की, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं, तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमिटी में या इसको एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक मर्यादा और संसद के नियमों का निरादर करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि श्री गांधी देश की राजनीति को नहीं समझते हैं।
राहुल गांधी की अगुवाई में और उनके द्वारा उत्तेजना के माध्यम से जो कांग्रेस के लोगों का आचरण रहा है उससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी स्वयं लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक शुचिता, संवैधानिक मर्यादा और संसद के नियमावली किसी को भी नहीं मानते। राहुल गांधी का पूरा आचरण अब अराजक हो रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने घरेलू बाजारों को स्थिर करने तथा उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 5,00,000 मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के साथ 25,00,000 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की मंजूरी दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान उपलब्धता और मूल्य परिदृश्य का व्यापक आकलन करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। 25,00,000 मीट्रिक टन गेहूं और 5,00,000 मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात से घरेलू कीमतों में स्थिरता आएगी, बाजार में तरलता बढ़ेगी, कुशल स्टॉक रोटेशन सुनिश्चित होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि हाल ही में यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ सभी मुक्त व्यापार समझौतों में भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्णतः रक्षा की गई है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 64वें दीक्षांत समारोह में ये बात कही।
अभी जितने समझौते हुए FTA आप देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन से हुआ हो, दुनिया के बाकी देशों से हुआ हो, सारे फैसले राष्ट्र USA से भी हमारा समझौता भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया, किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा गया।
श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली, गौरवशाली, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तत्पर रहने का आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP अध्यक्ष तारिक रहमान से बात की और बांग्लादेश चुनावों में शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
एक्स पर पोस्ट किए गए संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामनाएं दी और भारत की ओर से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के विश्वास को दर्शाता है। ऐतिहासिक जीत के बाद कई अन्य देशों ने भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बधाई दी। चुनाव आयोग के अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार 297 निर्वाचन क्षेत्रों में से बीएनपी और उनके सहयोगियों ने 212 सीटें जीती, जिनमें से 209 सीटें केवल बीएनपी ने हासिल की। वहीं बांग्लादेश जमात इस्लामी और उसके सहयोगियों को 77 सीटें मिली। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि कई मुश्किलों के बीच ये दशक भारत के लिए बहुत तरक्की का रहा है। इस दशक में मजबूत डिलीवरी और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले प्रयास शामिल हैं। श्री मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ईटी वैश्विक व्यवसायिक शिखर सम्मेलन में ये बात कही।
मुझे बहुत गर्व है, अनेक डिसरप्शन के बीच भी भारत के लिए ये दशक अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है, शानदार डिलीवरी का रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रहा। जब पिछला दशक शुरू हुआ था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित लोकभवन में भारत हिमालय अंतर्राष्ट्रीय सामरिक मंच भीष्म का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने भीष्म का प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट भी जारी की। एक रिपोर्ट।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि चेतना, संस्कृति और सभ्यता का जीवंत केंद्र है। इसी संदर्भ में भीष्म जैसे एक रणनीतिक थिंक टैंक के लिए उत्तराखंड अत्यंत उपयुक्त स्थल है। भीष्म एक रणनीतिक थिंक टैंक है जो देहरादून में स्थित बौद्धिक संस्थानों को एकत्रित कर उत्तराखंड राज्य को देश में रणनीतिक चिंतन के अग्रिम केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। साथ ही हिमालय क्षेत्र से संबंधित रणनीतिक विषयों पर केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करेगा तथा देहरादून और उसके आसपास स्थित शैक्षिक व अन्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दबदबा रहा। भारत ने अंतिम दिन 7 पदक जीते। सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत को कुल 33 पदक मिले, जिनमें 13 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने के प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को सामाजिक बुराई बताया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों के लिए कर्मयोग इन एक्शन राष्ट्रीय मीडिया अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री मुरुगन ने फर्जी खबरों पर नियंत्रण रखने और किसी भी समाचार को आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोग प्रमाणिक खबरों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भरोसा करते हैं। चेन्नई में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका ने नीदरलैंड को 197 रन से हरा दिया है। जवाब में नीदरलैंड ने 2 ओवर में 1 विकेट का लक्ष्य दिया है। जवाब में नीदरलैंड ने 2 ओवर और 1 विकेट पर 14 रन बना लिए हैं। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने कनाडा को 5 विकेट से हराया। वहीं जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि आयोग और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य दस्तावेज पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के संबंध में अपलोड किए जाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया। इसे शक्ति के स्थान पर सेवा की भावना का प्रतीक बताया। सेवा तीर्थ में नए प्रधानमंत्री कार्यालय से पहले निर्णयों में दुर्घटना राहत, महिलाओं, कृषि और स्टार्टअप सहित 4 प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति दी। बजट अधिवेशन का पहला चरण संपन्न। 3 सप्ताह के अवकाश के बाद दूसरे चरण के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक 9 मार्च से शुरू होगी। सरकार ने घरेलू बाजार में स्थिरता और किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के साथ अतिरिक्त 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दी। और नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत ने 7 पदक जीते। सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में 13 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 33 पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।